राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 4/3/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।
बढ़िया जल बढ़िया घट झलके नहीं झलके स्वाद है। मैंने कहीं आई पार का बोलिया ला था। सब मेरे गुरु बना दिए। ब्याह कर गई तो सास ने कहा कि पति है वो पति का गुरु है कोई होता है अलग स्त्री का गुरु नहीं होता। तो ये मेरी सास ने कहा वो बात ठीक है। पत्नी का गोत्र भी बदल जाता है। गोत्र बदल जाता कितनी बात है। जन्म हुआ है जिससे जिन माँ बाप से जन्म हुआ जो गोत्र है वो गोत्र भी बदल जाता है। पति का गोत्र हो जाता उसका गोत्र भी रहता। तो पति का गोत्र है वही गोत्र है। पति के गुरु गुरु है कि पति का सिद्धांत है वही सिद्धांत है। ये बात ठीक। तो क्या करना चाहिए अब बात क्या करनी चाहिए शंका पूछिए। ये शंका समाधान करो। तो भाई अपने सिद्धांत तो वही मानो पति का है वो सिद्धांत तो वही मानो। पर गुरु बना लिया तो एक माला उसे भी फेर दिया करो बना दिया स्वीकार कर दिया ना एक माला उसे भी फेर दो। बोलो अब शंका क्या रही उसको भी निराधार मत करो। नारायण 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 और इसमें शंका हो तो बोलोगे कोई भाई बोलो। तो बोलो सदन सुनना कहा चाहते हैं सुनना चाहते ना पृष्ठे कश्चित ब्रूजात अन्याय न पृष्ठ जानत न पिछ मेरा भी जनवल लोग मासरे ना पूछे बिना पूछे न कहे पर अन्याय गुरु पूछे तो भी न कहे। जानता हुआ भी मेरा भी मूर्ख है लंडी चले बैठा जानन न भी मेरा भी जड़वल लोग हमारे दो बार कह दे बात बताओ बोले ही नहीं अब बात ही देखो सिद्धांत की बात ये है। आप क्षमा करना भाई पहले क्षमा मांग लेता हूँ। कोई भी बात पूछे तो उसमें कहना कि तुम्हारा पूछना अयोग्य है ये कहना उचित नहीं है। मैं समझा नहीं ये कहना बिल्कुल अधिकार की बात है। मैं समझा नहीं अपनी बुद्धि कमजोर स्वीकार करना तो मनुष्य की संभव है सच्ची बात है। दूसरों कहना तू समझता नहीं ये कहना असभ्यता। हमें कह दिया कि प्रश्न बनता ही नहीं सूर्य की था तब मेरे को सूर्य का था मैं जानता नहीं मैं ऐसा पूरा समझा नहीं यही कहना चाहिए सिद्धांत से मैं समझा नहीं। अपनी बुद्धि को कमजोर कहने में मनुष्य स्वतंत्र है अधिकार है कह सकता है। दूसरे पर दोष आरोपण करे कि तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है ये वास्तव में न्याय नहीं है और उचित नहीं है अधिकार नहीं है अधिकार नहीं है ये सिद्धांत की बात ठीक है आई कि नहीं सिद्धांत की बात। अब बताओ भाई नारायण 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 राम 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 राम। सूर्य गीता इस वास्ते उन्होंने लिखा इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मन्वेत्राः मन्वीक्ष्वा कवये ब्रवीत्। एवं परंपरा प्राप्त विमल राजर्षयो विभू सकाले देह माता योगो नष्टप। भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं ये जो योग है, तीसरे अध्याय में कहा योग, योग मैंने पहले सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने इक्ष्वाकु को कहा, ऐसे परंपरा से गीता का उपदेश आया, वो समय पाकर नष्ट हो गया, मनु लुप्त तो हो गया, जानने वाले कम रहे, वही योग सहवायम मया तेजे योग भोक्ता पुरातन, वही आज पुरातन योग मैंने तेरे को कहा है। मतलब पहले योग की परंपरा चली आती है, तो उसमें सूर्य भगवान से कहा तो सूर्य वंशियों की एक कथा रही, राजऋषि लोग थे वे जानते थे, तो क्षत्रियों में बड़े बड़े राजऋषि पुरुष हुए हैं, जैसे महाराज जनक, ऐसे क्षत्रिय अश्वपति, ऐसे राजा लोग हुए हैं। वे राजा भी थे और तत्व की जीवन मुक्त पुरुष थे, उनके पास में ब्राह्मण आए हैं, तो अश्वपति महाराज के पास 10 कुलपति आए, 10,000 शिष्य जिनके हो, ऐसा एक गुरु कुलपति होता है, 10,000 ब्राह्मण पढ़ने वाले जिनके पास, वो पढ़ाने वाला, सबके समाधान करने वाला कुलपति होता है, ऐसे 10 कुलपति महाराज अश्वपति के पास आए। अश्वपति महाराज के पास आए कि हम ब्रह्म की विद्या जानना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। तो अश्वपति ने कहा कि देखो आप ब्राह्मण हो, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं ब्राह्मणों का गुरु बनने लायक नहीं हूँ, अधिकार नहीं है। कहते हमारे अधिकार नहीं, हमें तो ब्रह्म विद्या चाहिए। तो कहा कि दक्षिणा देना क्षत्रिय का धर्म है, तो मैं दक्षिणा दे सकता हूँ। कितनी विशेष मर्यादा, हमारा दिल गर्व हो गया, कैसी बढ़िया बात है, कितनी नम्रता की, कितनी सरलता की, कितनी निर्भिमानता की बात है। 10,000 शिष्य जिनके है उसे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले 10 कुलपति मिलकर के आते हैं राजा अश्वपति के साथ पास। कितनी सरलता है, कितनी विशेषता है। ये संत महात्माओं की बातें सुनते हैं तो दिल एक विशेष आनंद लेने लगता है, कितनी विलक्षण बात है। क्योंकि वो राजन तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम देना चाहो वैसे दो, हमें तो इस बात से मतलब है, तब तो लेना है हमें, तो भावना आपकी मर्जी है वैसे दो। तो फिर उनको ऊंचे आसन पर बैठा करके, पूजा करके, हाथ जोड़ करके ब्रह्म विद्या दी। उस ब्रह्म विद्या में उन्होंने पूछा कि आप अभ्यास कैसा करते हैं, कहाँ तक आप जानते हैं, कैसा कैसा अभ्यास है आप, किस तरह से पूछा। तो उन्होंने अपनी अपनी बात बताई कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो अशुपति ने कहा जो आप अभ्यास करते हैं इससे अगर इससे कट जाएगा, इससे ये अनर्थ हो जाएगा, ये पद्धति आपकी ठीक नहीं है, तो पद्धति को सुधार करके ठीक उपदेश दिया। फिर अच्छी तरह से उनको भी ब्रह्म ज्ञानी बनाया, दिया। तो दक्षिणा तो दे ही सकते हैं, गणी ब्राह्मण है उनको दक्षिणा दें। तो दक्षिणा देने में, दान देने में तो क्षत्रिय का अधिकार है दान देने का, तो दान के रूप में दे देंगे। इस वास्ते अपनी नम्रता, अपनी सरलता, अपनी सज्जनता ये बड़ी शोभा देती है, बड़ी अच्छी है, श्रेष्ठता है, ये दैवी गुण है। देवनाम परमात्मा का यहाँ दैवी गुण में दैवी संपत्ति मोक्ष आयो, दैवी गुण कहा, तो देव नाम देवता का नहीं है यहाँ देव नाम परमात्मा का है। देवताओं में गुण नहीं मिलेंगे, ये परमात्मा के भक्तों में, संतों में, जीवन मुक्त पुरुषों में अथवा तत्व की होने के लिए साधन परायण है उनमें मिलेंगे, देवताओं में नहीं मिलेंगे। कुछ मिलेंगे, शुद्ध नहीं मिलेंगे, इससे विपरीत देवताओं में मिलेंगे। देवी संपद विमोक्ष आय वहाँ देवी संपद परमात्मा का वाचक है। मातृदेव भो, पितृदेव भो, आचार्य देव भो, अतिथि देव भो, ये जो देव शब्द है ये परमात्मा का वाचक है, देवता का वाचक नहीं। मानो परमात्मा रूप समझो, माता को परमात्मा का स्वरूप समझो, पिता को परमात्मा का स्वरूप समझो, गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझो, अतिथि को परमात्मा, चार बात आती है, अतिथि को परमात्मा का स्वरूप समझो, ऐसा तुम हो जा मातृदेव भो, पितृदेव भो, आचार्य देव भो, अतिथि देव भो, ऐसी बात आ रही है। तो परमात्म तत्व है वो विलक्षण है, अलौकिक है। ये पूछते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्म का स्वरूप ये योग वशिष्ठ में आता है। योग वशिष्ठ में जो भगवान राम वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं कि महाराज ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ऐसा प्रश्न, तो महाराज चुप हो गए। क्योंकि महाराज ब्रह्म का स्वरूप ये बता दिया ना, ब्रह्म का स्वरूप चुप है, कोई वचन नहीं चलते वहां, ये तो बात हो निवर्तन थे अपरा प्रमाणसा सह, मन के सहित वाणी जहां प्रवेश नहीं करती, तो वाणी प्रवेश नहीं करती, मन भी प्रवेश नहीं करता, बुद्धि नहीं कर रही, न वाक गति न बुद्धि जाती नहीं है, मन सा न मनो थे ये ना और मनोमत तदेव ब्रह्म बुद्धि नीलम यदि मन सा न मनो थे, वहाँ बुद्धि मन आदि की गति नहीं है, वो ब्रह्म है। तुम जो उपासना करते हो ये नहीं है, उपासना से उपासना की जाए ये नहीं है। तो उसका वर्णन करने में महाराज वशिष्ठ जी भी चुप हो गए। तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है पूछते हैं, और कैसे लक्षण प्राप्त होने पर ब्रह्म समझा जाता है। लक्षण देवी संपत्ति है, उसी प्राप्ति करने के लिए है, पर ब्रह्म ज्ञानी की परीक्षा नहीं, लक्षण नहीं है। गीता में लक्षण बताए, गुणातीत के लक्षण है वो ब्रह्म ज्ञानी के लक्षण है गुणातीत, परंतु गुणातीत के लक्षण नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे तो क्या है, लक्षण है तो लक्षण नहीं है कैसे, लक्षण नहीं है तो है कैसे, थोड़ा सा ध्यान दे विचार करें। मानो जिसको तत्व की प्राप्ति हो गई वो गुणातीत होता है, वो ब्रह्म ज्ञानी होता है, तो उसके लक्षण पूछते हैं। तो लक्षण ब्रह्म ज्ञानी के पूछते हैं, इसमें एक बात बताऊं, उल्टा अर्थ मत लेना भाई, ऊंधा अर्थ मत लेना। ब्रह्म ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं, ब्रह्म ज्ञानी कोई हुआ नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, फिर ब्रह्म ज्ञानी लक्षण कैसे। जिसके एक देहाभिमान है मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, वो अज्ञानी है। मैं ब्रह्म को जानता हूँ तो अज्ञानी, मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ तो अज्ञानी, ब्रह्म को जानता हूँ नहीं जानता हूँ संदेह है तो अज्ञानी, तो क्या बोलेगा तू। वो वाणी का मिश्र नहीं होता वहां पर। तो गुणातीत के लक्षण है, ये क्या बात है, प्रकाशन च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव नद्वेषी संप्रवृत्तानि नानवृत्तानि कांक्षति उदासीन उदासीन हो गुण योन विचार लेते गुण वर्तनते योग से सिद्धेंगते। तो ये बताया है, अब ध्यान देकर सुने मेरी बात, उल्टा अर्थ मान लें, हम तो ज्ञानी मानते ही हैं कि तो ज्ञानी तो होता नहीं, तो ज्ञानी और अज्ञानी ये अज्ञानी की कल्पना है। सच्ची बात ये है कि अज्ञानी की कल्पना है, तो समझाना अज्ञानियों को यह ज्ञानी को समझा थोड़ा ही जाता है। ज्ञानी की बात वो समझाई नहीं जाती है, अज्ञानी शास्त्र के और उपदेश के अज्ञानी सब अज्ञानी अधिकारी होते हैं, ज्ञानी अधिकारी थोड़ा होता है, ज्ञानी अधिकारी होता है। ज्ञानी तो ज्ञानी है, वो अधिकारी क्या है कि कोई जानना करना बाकी नहीं, ना जानना बाकी है ना करना बाकी है ना पाना बाकी है। कृतकृत्य है, ज्ञात ज्ञातव्य है और प्राप्त प्राप्तव्य है, तो यदि कोई बाकी नहीं रहा तो अज्ञानियों के लिए ही ज्ञानी की कल्पना है। तो अज्ञानी के अंतःकरण में ज्ञानी अज्ञानी दो है, तो अंतःकरण की कल्पना है, वास्तव में तत्व की होता है वो व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति होता है तब तक तत्व की नहीं है। ये बात है सिद्धांत से, इस बात ज्ञानी के लक्षण नहीं। तो मेरे गुणातीत के लक्षण, ये गुणातीत के लक्षण ये है कि जिस शरीर में जिसका अभिमान था वो अभिमान चले जाने पर उसके शरीर में कैसे लक्षण होते हैं वो है। तो वो तत्व ज्ञान हो जाने पर शरीर में नहीं रहता, परंतु शरीर का व्यवहार होता है उसमें लक्षण कैसे होते हैं वो ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। वो तत्व हो गया वो तो उसके लक्षण तो वही होते ही नहीं, उसको ज्ञानी कहते हैं अज्ञानी लोग। इस वास्ते उसी दृष्टि से तद्भाषयोत्तरम भूते श्रुति सौति हेजनी, उसी भाषा से ही उत्तर देते हैं। और जैसे सुनने वाले जिस भाषा को समझे उसी भाषा से उसे उत्तर दिया जाए, नहीं तो समझेगा कैसे। तो ज्ञानी अज्ञानी ये दो कल्पना अज्ञानियों की है, तो उस अज्ञानियों को समझाने के लिए कहता है ज्ञानी ऐसा होता है, वो गुणातीत ऐसा होता है, उसके लक्षण ऐसे होते हैं, उसके आचरण ऐसे होते हैं, उनके व्यवहार ऐसे होता है। कई लिंग गुणानी तो बहुत किमाचार्य कथन चेता गुणानी, तीन प्रश्न की है ना, उनके लक्षण क्या है, आचरण कैसे है और उपाय क्या है, ये गीता में लक्षण पूछे। तो उपाय बताए, सब लक्षण बताए, आचरण बताए, उपाय बताया है। उपाय मान से अब व्यभिचार भक्ति योगन भक्ति सेवन करे वो गुणों को अतिक्रमण करके प्राप्ति कर लेता है, उपाय भी बताया है। तो ये आता है वर्णन, तो ये अज्ञानियों की दृष्टि से आता है। तत्व की वास्तव में विचार किया जाए तो वहाँ पर वाणी नहीं जा सकती, मन नहीं जा सकता, बुद्धि भी नहीं जा सकती, प्रकृति नहीं जा सकती। प्रकृति का कार्य मन बुद्धि इंद्रियां करण कैसे पहुंचेंगे, प्रकृति से अतीत तत्व है ये सब प्रकृति के कार्य, तो प्रकृति के कार्य प्रकृति तक ही नहीं पहुंचते, प्रकृति से अतीत तक कैसे पहुंचेंगे। प्रकृति का वर्णन बुद्धि नहीं कर सकती, वाणी नहीं कर सकती, इंद्रियां नहीं कर सकती, प्रकृति का ही प्रकृति अतीत तत्व कैसे कहे। तो उस अतीत तत्व को जानने के लिए आदर्श चरित्र होते हैं, आदर्श गुण होते हैं, आदर्श लक्षण होते हैं, उनका वर्णन है। जिनमें की अज्ञानी अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाकर वैसा बन सके, इस वास्ते उपाय बताया है। ये बात साधक संजय ने मैं ये बात लिखी है, गुणातीत के लक्षण है अध्याय के अंत में बताए, आप पढ़ रहे कैसे लक्षण होते हैं, क्या आचरण होते हैं, उपाय क्या है, तीनों बातों पूछिए, तेरे बातों से 21वां प्रश्न है, 22, 23, 24, 25, 26, 27 छह श्लोकों में उत्तर है। नारायण 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 राम 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 नारायण 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 परमात्म तत्व को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए दो बात बताता हूँ। प्राप्त करने का जो साधन होता है वो साधन बहुत दामी होता है, साध्य वो प्राप्त कर रहे इस बार साधन है वो तो साध्य को भी कब्जे में ले ला ऐसा होता है साधन। उनके साधनों का वर्णन शास्त्रों में है, परमात्म तत्व को विवेचन करने का नहीं है, उनके स्वरूप का वर्णन करने ऐसी बात नहीं है। तो क्या है उपाय है, तो उपाय उस परमात्म तत्व का वर्णन करने में नहीं है, उस तत्व की प्राप्ति जिन लक्षणों से हो जाए उन लक्षणों का वर्णन है। तो वो परमात्म तत्व बनाया नहीं जाता है, संसार में जितनी चीजें प्राप्त की जाती है वो अपूर्व है, पहले नहीं थी पीछे उत्पन्न हुई है, उसको प्राप्त करने के उपाय शास्त्रों में मिलते हैं। तो क्योंकि उत्पन्न होने वाली वस्तु है, परमात्म तत्व अनुत्पन्न है, तो अनुत्पन्न तत्व को उत्पन्न नहीं किया जाता, क्रिया से की जाती वो उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति रहित तत्व को कैसे कहे किससे से कहे। तो अब हमको कैसे प्राप्ति हो उसकी, तो एक बात बताते हैं बड़ी सीधी। तो दो बात कह दी, एक बात तो ये कह दी, अब एक बात दूजी कहता हूँ। जो भाई बहन उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार को शुद्ध बनावे, अपने आचरणों को निर्मल बनावे, अपनी दिनचर्या रात्रिचर्या ऋतुचर्या वर्षचर्या और जीवनचर्या, अपने जीवन को शुद्ध निर्मल बनावे, उससे उस तत्व की प्राप्ति हो जाती है। बाधा क्या है कि हमारे जीवन में जो दोष है, आश्रित संपत्ति है, अभिमान है, ये ही उसके बाधक है परमात्मा की प्राप्ति में, नहीं तो वो नित्य प्राप्त है। अभिमान के कारण से उसको देख नहीं सकते, अभिमान जिसकी एक बड़ी भारी जबरदस्त आग है, वो नहीं देख सकते उस तत्व को, नहीं देख सकते तो तत्व देख नहीं सकते वो। तत्व को नहीं जान सकते, तत्व को जान सकते हैं वो जो तत्व की जिज्ञासु हो, जब तत्व मिले हमें तत्व मिले, ये जिज्ञासा ही उस तत्व को प्राप्त करने के लिए अचूक साधन है। वो जिज्ञासा ऐसी हो जिसमें व्याकुलता हो जाए, दिन में भूख नहीं लगे, रात में नींद नहीं आवे, बात नहीं सुहावे, बेचैनी बीच में बलती रहे, उसके बिना रहा न जाए, जैसे मीराबाई ने कहा हृदय मारी हरी बिना रहो रे न जाए, उसके बिना रहा नहीं जाता, ऐसी व्याकुलता होगी, ऐसी व्याकुलता से तत्व की प्राप्ति होती है। चाहे सगुण की करो चाहे निर्गुण की करो, किसी की प्राप्ति करो, असली जिज्ञासा होने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। सगुण की व्याकुलता होने पर सगुण की दया से उसको प्राप्त हो जाता है, और निर्गुण तत्व की व्याकुलता होने से बाधा सब हट जाती है, स्वरूप में अनुभव हो जाता है। क्योंकि वो तो तत्व है ही, अभिमान है, एक देह देश एक शरीर का, वो देहाभिमानी है, देहाभिमानी नहीं सर्वे दोष प्रादुर्भवंती, ये देहाभिमानी में दोष तरह तरह के पैदा होते हैं, सर्वे दोष सब दोष प्राप्त होते हैं अभिमान की छाया में। आसुरी संपत्ति पूरी रहती है, देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, तो आसुरी संपत्ति में दम्भो दर्पो अभिमान से क्रोध है पारुष्य में अज्ञानम चावी से पार संपर्क आसुरी, ये छह लक्षण बताए आसुरी संपत्ति के, इनमें सब में मुख्य अभिमान है। आसुरी संपत्ति के अवगुण और दुनिया के अवगुण सब कहाँ रहते हैं, जैसे इतिहास में आता है कि बहेड़े का वृक्ष होता है उसके भीतर रहता है, उसकी छाया में कलयुग रहता है, ऐसे अभिमान की छाया में आसुरी संपत्ति रहती है। अभिमान की छाया, मैं जानकार मैं समझदार हूँ, ये भाव जहाँ होता है उसमें सब अवगुण आ जाते हैं। अवगुण जिसमें होते हैं उसको मालूम है कि मेरे में ये कमी है, उसके अवगुण दूर हो सकते हैं, परंतु मैं गुणवान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं जानता हूँ, उसको ज्ञान नहीं हो सकता। अभिमान बहुत बाधक होता है उसमें, वो अभिमान उसमें है तो उसको ज्ञान होना मुश्किल है। इस वास्ते अत्यंत पंडित हो, अत्यंत रोगी हो, अत्यंत धनी हो, अत्यंत मानी हो, उसको ज्ञान नहीं था, उसमें ज्ञान नहीं होता, तो अभिमान रहता है। महाराष्ट्र में वो थे ना एक पंडित, क्या नाम था, नामी पंडित है ना, मोरोजी पंत, मोरोजी पंत बड़े नामी विद्वान थे। तो एक दिन जाते जा रहे थे तो भगवान की बड़ी कृपा हुई, जो दो प्रेत बैठे थे एक वृक्ष पर, तो एक जगह खाली थी, तो उन्हें बता भाई अपनी ये जगह खाली नहीं रहेगी, यहाँ कौन आएगा, ये मोरोजी पंत आएगी, पंडित ये प्रेत आएंगे, प्रेत तो अत्यंत पंडित होता है, प्रेत बनता है। बच्चों दीदी से भी प्रेत हो गए, उन्होंने पढ़ाई बदराज सिद्धांत पढ़ाई बदराज में बनाई, तो अपने में अभिमान होता है, ये संपूर्ण आश्रय संपत्ति का कारण होता है। तो अभिमान होता है गुण को लेकर। इसमें एक मेरे शंका हुई थी, वो ही बता देता हूँ समाधान सहित। शंका ये हुई कि जैसे मैं सत्य बोलता हूँ तो अभिमान होता है कि ये लोग इतना सत्य नहीं बोलते, ख्याल नहीं रखते, बात बात में झूठ बोल देते हैं, मैं बड़ा सावधान हूँ, सत्य बोलता हूँ, तो सत्य बोलने का एक अभिमान पैदा होता है। वो सत्य बोलने का अभिमान असत्य से बहुत भयंकर होता है। असत्य तो सत्य के द्वारा छूट जाता है, असत्य भाषण करने वाले को ये ज्ञान होता है कि मैं असत्य बोलता हूँ, पर सत्य भाषण का अभिमान होता है उसको ये ज्ञान नहीं होता कि मेरे में कोई कमी है, मैं तो सत्य भाषण करने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, बड़ा समझदार हूँ, उसको कमी का ज्ञान नहीं होता, इस वास्ते उसकी पूर्ति नहीं होती। अरे भाई घड़े में जल तो तभी समावेगा जब उसमें कुछ जगह होगी, जब पूरा हुआ घड़ा है तो पानी डालते रहो, जूता रहेगा उसमें आएगा नहीं, अटेगा नहीं, वो तो भरा है पहले ही। ऐसे अपने आप को अच्छा समझदार ज्ञानी ऐसा समझता है तो उसको ज्ञान नहीं होता। अभिमान आ गया नहीं, अभिमान की रे छाया में सब अवगुण रहते हैं। ऐसा उनको बात हुई कि ये मोरोजी पंत जा रहे हैं ना, ये आएंगे हमारे यहाँ प्रेत तीसरा, जिसकी जगह ये खाली है, ये मरकर यहाँ आएंगे, तो उन पर कोई भगवान की कृपा होगी, उनको ज्ञान हो गया, समझ आ गई, फिर वे जाकर संत बन गए, भगवान संतों के शिष्य बन गए। किसी शिष्य बने, ज्ञानेश्वर जी के शिष्य बने, उद्धार हो गया, शिष्य बन गए, तो अभिमान दूर होने से शिष्य बने ना, नहीं तो कैसे बनते। तो अभिमान है उसके लिए अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, नारद भक्ति सूत्र में लिखा है भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। संसति मूल शूल प्रविनाना सकल शोक दायक अभिमान, अभिमान सकल शोक देने वाला, सब तरह के दोष पाप अत्याचार अनुसार सब तरह के दोष अभिमान में आते हैं, कोई दोष बाकी नहीं, सकल शोक दायक अभिमान। तो सज्जनों अभिमान से छुटकारा करो, किसी तरह से ही हो। अच्छाई का अभिमान है वो बुराई की जड़ है, ध्यान देना भाई। अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, बुराई बुराई पैदा होगा। अच्छाई तो आ गई, रसिका आ गया अभिमान, तो मेरे ये बात है, मेरे में शंका ये है। अब शंका बताता हूँ, ये तो बताया वास्तव में अभिमान का दोष, पर अभिमान का दोष जिसमें है वो अभिमानी होता है। तो अभिमान का दोष है तो ये से बचना बड़ा कठिन है। शंका ये हुई कि देवी संपत्ति हम प्राप्त करते हैं, जैसे सत्य भाषण करते हैं तो सत्य का अभिमान आ जाता है, तो सत्य के अभिमान से अभिमान आया तो देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का कारण बना। देवी संपत्ति है वो आसुरी संपत्ति का कारण है। सत्य भाषण करते हैं अभिमान आता है, तो सत्य भाषण करने से अभिमान आया ना, तो सत्य भाषण है देवी संपत्ति, परंतु ये अभिमान का कारण है। अभिमानी है वो संपूर्ण अवगुणों का कारण है, तो देवी संपत्ति से भी अभिमान आता है, आसु संपत्ति आती है, आसु संपत्ति है, फिर आसु संपत्ति से बचने का उपाय क्या? देवी संपत्ति मोक्ष आए, मोक्ष आदि निबंधा हुई है तो बंधन वास्तव हो गई, तो बड़ी मुश्किल हुई। ये हमारी शंका दोबारा क्या कहूँ, फिर मानो देवी संपत्ति का एक गुण आया, अब है हम सत्व संशुद्धि की, अब है आया सत्व संशुद्धि अंतर्गत शुद्धि आई, ऐसे देवी संपत्ति का गुण आने से अपने में एक देवी संपत्ति का अभिमान आता है कि मेरे में ऐसे ऐसे गुण हैं, ऐसे अभिमान आता है, तो अभिमान है आसुरी संपत्ति, तो देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति की जनक हो गई, देवी संपत्ति से आसुरी संपत्ति पैदा हो गई, तो फिर आदमी का उद्धार कैसे होगा? देवी संपत्ति मोक्ष है, देवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का कारण, तो देवी संपत्ति विमोक्ष आए कैसे कहा? इसमें एक बारीक बात है, वो समाधान की है। मानो सत्य भाषण करते हो तो सत्य भाषण करते हुए अंश कहीं असत्य का अंश रहता है, वो असत्य के अंश के कारण से सत्य का अभिमान होता है। असत्य किंचित मात्र न रहे तो अभिमान नहीं होगा, ये समाधान है। फिर सुने दोबारा कह दू, हम सत्यभाषी हैं, हम झूठ नहीं बोलते, कुछ ख्याल नहीं रखते, हम सत्यभाषी हैं। तो सत्यभाषी है तो असत्य का कहीं दोष है, उस असत्य के दोष से सत्य के सहारे से वो अभिमान रूप धारण कर लेता है, तो असत्य का असत्य है वो अभिमान का अंश है। केवल सत्य हो तो नहीं होता है, तो बीच में दुगुण हो ऐसा कि अवगुण न रहे। भर्ति हरि ने कहा है कि यदा किंचित यो हम दिपयो मदांध समभवम, यदा किंचित किंचित थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, ऐसे मैं जानने लगा तो मेरे को मत वाला हाथी हो जैसा प्रभावी मानूंगा, सारा सर्वज्ञोस्मित्य भवद अवलिप्तम मम मनः, मैं सर्वज्ञ हूँ, ऐसे अभिमान में मन भर गया एकदम, मैं जानकार हूँ। दिव्य हूँ मदानतः, मत वाला हाथी की तरह पर मैं आ गया कि मैं बड़ा जानकार हूँ, बड़ा समझदार हूँ, ये थोड़ा जानते हैं सब, समझे? थोड़ा जानने में अभिमान पैदा होता हो, पूरा जानने में नहीं होता। भरिया सो झिलके नहीं झिलके सो आधा, मिनखरी आई पार का बोलिया लाधा।